हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। सुबह के लगभग 10 बजे के करीब शिवांशा की नींद टूटी। रात को देर से सोने की वजह से वेद अब तक नींद के आगोश में था। शिवांशा जल्दी से उसकी गोद से उठी और उसके चेहरे की तरफ देखा, जो बिल्कुल शांत लग रहा था। ना कोई गुस्सा और ना ही किसी तरह की फिक्र। वेद को देखकर अचानक शिवांशा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो खोई हुई निगाहों से काफी देर तक वेद का चेहरा देखती रही, क्योंकि जब वेद उसके सामने खड़ा होता था तब तो उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो नजरें उठाकर भी उसकी तरफ ठीक से देख सके। शिवांशा ने वेद को उठाने की कोशिश की ताकि वो ठीक से कंफर्टेबल हो सके। जैसे ही शिवांशा ने वेद का हाथ पकड़ा, उसकी आंखें जल्दी से खुल गई थीं और उसने शिवांशा का हाथ झटक कर दूर कर दिया था। शिवांशा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अगर ऐसी हरकत वो करती तो फिर भी समझ आता था, पर उसने वेद से इसकी उम्मीद नहीं की थी। आगे से गलती से भी मुझे इस तरह अचानक से मत छूना, वेद ने सख्त आवाज में कहा। लेकिन मैं तो सिर्फ आपको जगाने की कोशिश कर रही थी, मुझे लगा कि आप कंफर्टेबल होकर सो सकें, बस इसीलिए मैंने हाथ पकड़ा था, शिवांशा ने मायूसी से जवाब दिया। वेद की सख्ती से बात करने पर उसका चेहरा उतर गया था। मैं तुम्हारे इंटेंशन पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, ना ही तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। तुम भी नींद में होती और अचानक तुम्हें भी आकर कोई टच करता है तो तुम डर जाती हो। सबकी अपनी अपनी इनसिक्योरिटी होती है। मैंने कभी तुमसे इस बारे में सवाल नहीं किया, बल्कि इस बात का पूरा ध्यान रखा कि मैं अपनी तरफ से तुम्हें सेफ फील करवा सकूं, तो तुम भी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, वेद ने उसे आराम से समझाया। वो शिवांशा की बीमारी में उस पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। तो क्या आप मेरी वजह से अनसेफ फील करते हो, अचानक उसके मुंह से निकला। फिर शिवांशा को भी एहसास हो गया कि उसने गलत कह दिया था। वेद ने उसे देखकर सार्कास्टिकली सिर हिलाया और फिर बेड से खड़ा हो गया था। उसे शिवांशा के साथ किसी तरह की बहस नहीं करनी थी। मैं डॉक्टर के पास जाकर तुम्हारी हेल्थ अपडेट लेकर आ रहा हूँ। अगर किसी तरह की कोई तकलीफ हो रही है तो अभी बता दो, आज के लिए यहीं रुक जाते हैं, वेद ने पूछा तो शिवांशा ने तुरंत नामे सिर हिला दिया था। उसे हॉस्पिटल में काफी अनकंफर्टेबल महसूस होता था। ऊपर से शिवांशा की वजह से वेद भी परेशान हो रहा था। कल रात भी वो ठीक से सो नहीं पाया था। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप डिस्चार्ज पेपर बनवा लीजिए, शिवांशा ने जवाब दिया, लेकिन उसको अपनी हेल्थ कंडीशन आगे बताने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। बोलते हुए अचानक शिवांशा का सर थोड़ा सा चक्कर सा आया और उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा था। वो दौड़कर जल्दी से बाथरूम के अंदर गई। वेद ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और अपना सिर पकड़ लिया था। उसके सिर में भी हल्का दर्द हो रहा था। वेद डॉक्टर के पास गया और उसने शिवांशा के बारे में उन्हें सब कुछ रिपोर्ट कर दिया था। उनकी तबीयत पहले से ही खराब थी मिस्टर चौहान, ऊपर से इनडाइजेशन ने कंडीशन को और बिगाड़ दिया है। मैं कुछ रिपोर्ट करवा देता हूँ, मुझे डर है कहीं पेट में किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया होगा, डॉक्टर ने बताया। ठीक है, जो भी करना है करवा लीजिए, बट आई वॉन्ट कि मेरी वाइफ जल्दी से ठीक हो जाए, उसे हॉस्पिटल में रहना पसंद नहीं है, वेद ने जवाब दिया। डॉक्टर ने हाँ में सिर हिलाया और फिर वेद शिवांशा को कुछ जरूरी टेस्ट के लिए लेकर जा रहा था। शिवांशा को इस वक्त सच में बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि उसकी वजह से वेद का रूटीन पूरी तरह बिगड़ कर रह गया था। पहले रोहन के चलते वो हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा था, तो अब शिवांशा के चलते। टेस्ट हो जाने के बाद वेद शिवांशा को वापस कमरे के अंदर ले आया था। आप चाहो तो ऑफिस जा सकते हो, यहाँ मेरा ध्यान रखने के लिए नर्स वगैरह हैं, शिवांशा ने धीमी आवाज में कहा। हमें आज रात हॉस्पिटल में ही रहना होगा, मैंने वंश को बोल दिया है, वो आगे से काम देख लेगा, लेकिन तुम भी थोड़ा ध्यान रखो। अगर रात को तुमने मेरा खाना खाने की जिद नहीं की होती तो तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब नहीं होती। आगे से एक हफ्ते तक तुम सिर्फ लाइट फूड खाने वाली हो, घर पर भी इसी तरह का सादा खाना बनेगा, वेद ने जवाब दिया। उसकी आवाज में सख्ती थी। अगर वेद का बस चलता तो वो सीधे सीधे शिवांशा को बहुत सारा डांट देता, पर फिलहाल उसकी जो मेंटल कंडीशन चल रही थी उसके चलते वेद काफी प्यार से पेश आ रहा था। वो तो अपने गुस्से और नफरत तक को भूल गया था। शिवांशा ने बिना किसी बहस के उसकी बात को मान लिया था। रिपोर्ट्स में शिवांशा के पेट में किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं आया था, इसलिए शाम तक डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया था। वेद शिवांशा को लेकर चौहान पैलेस लौट रहा था। वहीं दूसरी तरफ नव्यांशी इस वक्त अपने ऑफिस के केबिन में बैठी हुई थी। उसने थोड़ी देर पहले ही उस कॉन्सर्ट की टिकट बुक की थी जहां वो शिवांशा और आराध्या के साथ जाने का सोच रही थी। अचानक नव्यांशी को अरमान का ख्याल आया, जो बार बार यही कहता था कि उसने अभी तक शिवांशा को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो तुम्हें लगता है कि मैं शिवांशा भाभी की झूठी रिस्पेक्ट करने का दिखावा करती हूँ और मुझे उनकी परवाह नहीं है? तो अब वक्त आ गया है अरमान राजावत, तुम्हें ये बताने का कि चौहान फैमिली में वेद भैया की वाइफ को पूरा सम्मान मिलता है और उन्हें जीने की आज़ादी है। तुम्हें भी तो पता चले कि शिवांशा भाभी की वेद भैया कितनी केयर कर रहे हैं और हम सब लोग उनके लिए कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं। नव्यांशी ने अरमान को कॉल किया ताकि वो उसके सामने खुद को बड़ा साबित कर सके। शिवांशा की तबीयत खराब थी तो उसके पास अच्छा खासा बहाना था कॉल करने का। वो ये कह सकती थी कि वो शिवांशा की तबीयत का बताने के लिए कॉल कर रही है। शिवांशा की हेल्थ अपडेट देने के लिए नव्यांशी ने खुद ही अरमान को कॉल कर लिया था। इस वक्त अरमान का मोबाइल मनन के पास था और वो उसमें गेम खेल रहा था। मनन बार बार कॉल कट कर रहा था, इस वजह से नव्यांशी को गुस्सा आ रहा था। तो वहीं मनन अलग से गुस्से में था कि कोई उसे गेम खेलते हुए डिस्टर्ब कर रहा था। आखिर में उसने कॉल रिसीव कर ही दिया था और वो उस पर चिल्ला कर बोला, अभी मनन गेम खेल रहा है तो ये नंबर बार बार बिजी आएगा, प्लीज आप कॉल मत कीजिए। रुको मनन, नव्यांशी ने नर्म आवाज में कहा, मेरा अरमान से बात करना बहुत जरूरी है, मुझे शिवांशा भाभी के बारे में कुछ बताना था। क्या शिवी के बारे में कुछ बताना था? मुझे बताओ कैसी है वो, मनन ने जल्दी से पूछा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी सीरियस हो गए थे। नहीं, मुझे अरमान से ही बात करनी है क्योंकि वो बड़ा है, चलो अब जल्दी से बात करवाओ उससे। नव्यांशी उससे काफी प्यार से बात कर रही थी। मनन ने एक नज़र मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखकर मुंह बिगाड़ा और उसे अरमान के पास लेकर गया। अरमान इस वक्त अपने काम के चलते बिजी था। मनन को देखते ही उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया था। मनन ने मोबाइल अरमान की तरफ बढ़ाया और अपने बच्चों जैसी आवाज में कहा, खूबसूरत चुड़ैल का फोन आया है। मनन के मुंह से खूबसूरत चुड़ैल शब्द सुनकर नव्यांशी और अरमान दोनों ही हैरान रह गए थे। नव्यांशी को जहां गुस्सा आ रहा था तो वहीं अरमान समझ नहीं पा रहा था कि मनन किसके बारे में बात कर रहा है। वैसे तो ये मनन की पुरानी आदत थी कि वो सबके फनी नाम निकाल कर रखता था। कौन खूबसूरत चुड़ैल, मनन कितनी बुरी बात है, मैंने तुम्हें समझाया है किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलते हैं, अरमान ने उसे प्यार से डांटते हुए कहा। हाँ, शायद मुझे उसे खूबसूरत नहीं कहना चाहिए था, वो सिर्फ चुड़ैल है। वो कह रही है कि उसे शिवी के बारे में बात करनी है। जब देखो फोन करके तुम्हें परेशान करती रहती है, कहीं उसे तुमसे प्यार तो नहीं हो गया जो बार बार तुम्हें कॉल करती है, मनन ने जल्दी जल्दी कहा।
वही मनन के सब बताने पर अरमान को भी समझ आ गया था कि जरूर कॉल नव्यांशी का होगा। उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट उभर आई। वैसे बिल्कुल सही नाम दिया है तुमने उसे, और खूबसूरत नाम उसके आगे सेट नहीं करता, अरमान ने जानबूझकर नव्यांशी को सुनाते हुए कहा। तो वहीं उधर नव्यांशी का मन कर रहा था कि वो फोन के अंदर घुसकर अरमान का गला दबा दे। ठीक है, तो मैं क्या उसे चुड़ैल कहकर बुला सकता हूँ? क्यों ना हम उसका नंबर इसी नाम से सेव करें, मनन ने एक उंगली को अपने गाल पर रखकर कहा। अरमान ने उसकी बात पर हामी भरी और मोबाइल ले लिया था। मनन वहां से बाहर चला गया। उसके जाते ही जैसे ही अरमान ने फोन अपने कान के लगाया, दूसरी तरफ से नव्यांशी की गुस्से भरी आवाज आई, ये क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहे हो तुम अपने भाई को? वो बच्चा है, उसका माइंड इतना डेवलप नहीं है, तो तुम क्या उसे ये सब सिखाओगे? नव्यांशी की बात सुनकर पहली बार अरमान थोड़ा चौंक गया था। अब तक जो भी मनन से मिलता वो उसकी मानसिक हालत का मजाक उड़ाता था, यहां तक कि पहली बार नव्यांशी ने भी ऐसा ही किया था। आज वो पहली बार मनन को सही से समझ पाई थी और उसके लिए सही शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी। मैं उसे कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सिखा रहा हूँ। दूसरी बात, उसका दिमाग इतना भी बच्चों जैसा नहीं है। भले ही इतना डेवलप नहीं हो पाया है, पर कई बार वो हमसे ज्यादा समझदारी भरी बातें कर जाता है, अरमान ने समझाया। क्या तुमने उसका ट्रीटमेंट किसी अच्छी जगह करवाया? आउट ऑफ कंट्री लेकर जा सकते थे, डॉक्टर की रिपोर्ट क्या कहती है? नव्यांशी ने केयरिंग वे में पूछा। मैं हर पॉसिबल जगह लेकर जा चुका हूँ, डॉक्टर का यही कहना है कि मनन के दिमाग को कोई गहरा धक्का लगा है जिसकी वजह से उसका दिमाग बचपन में अटक कर रह गया है। दरअसल हमारी मॉम की मौत के बाद से ही मनन के दिमाग की हालत ऐसी हो गई, अरमान ने उसे बताया। उसकी आवाज़ में मायूसी थी। अरमान की बुझी हुई आवाज़ सुनकर नव्यांशी का अच्छा नहीं लग रहा था। उसने उसका मूड ऑफ करने के लिए कॉल नहीं किया था। नव्यांशी ने तुरंत बातचीत का टॉपिक बदलते हुए कहा, डोंट वरी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया है कि कल रात शिवांशा भाभी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। क्या क्या हुआ है शिवांशा को? अरमान ने जल्दी से पूछा। कुछ नहीं, बस मौसम बदल रहा है तो थोड़ी कोल्ड हो गई होगी, जिस वजह से फीवर आ गया। भैया उन्हें लेकर कुछ ज्यादा ही कंसर्न है, इसलिए वो हॉस्पिटल लेकर गए हैं। डोंट वरी, भाभी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, तुम तीन दिन बाद में फ्री हो क्या? मैंने यहाँ एक कॉन्सर्ट की टिकट बुक करवाई है, शिवांशा भाभी भी चलने वाली हैं, क्या तुम भी आओगे? मनन को भी ले आना। नव्यांशी ने उसे सब कुछ बताया और फिर कॉन्सर्ट में आने का पूछा।
वो भी अरमान से मिलना चाहती थी और ये अच्छा बहाना था। अरमान को इस तरह भीड़भाड़ वाली जगह पर जाना पसंद नहीं था, लेकिन हाँ, मनन के लिए वो काफी बार उसे ऐसी जगह लेकर गया था। अरमान ने सीधे सीधे मना करना सही नहीं समझा। अरमान ने जवाब में कहा, हमारी काफी दिनों से बात नहीं हुई है, शायद तुम नहीं जानती, लेकिन मैं अब राजस्थान में नहीं हूँ, दिल्ली आ गया हूँ। वैसे भी हमें यहीं पर आना था, तुम एंजॉय करो। अरमान के जाने का सुनकर नव्यांशी को थोड़ा शौक लगा, हालांकि उसने तुरंत खुद को संभाल दिया था। कोई बात नहीं, वैसे मैंने ये खास शिवांशा भाभी के लिए प्लान किया था, वो हमेशा अकेले घर पर रहती हैं, तो सोचा किसी बहाने बाहर भी घूम आएगी और हम लोगों से उनकी बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होगी, उन्हें पसंद है ना ये सब। नव्यांशी ने तुरंत बातचीत का रूप बदल दिया था और सारी बात शिवांशा की तरफ ले गई थी। हाँ, उसे अच्छा लगेगा, चलो मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, अभी मुझे कुछ काम है, अरमान ने जवाब दिया और कॉल कट कर दिया था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी और वो समझ गया था कि नव्यांशी ने किस इरादे से कॉल किया है। अरमान को ये दिखाने के लिए कि शिवांशा की उनके घर में अच्छी खासी रिस्पेक्ट होती है, सब उसे प्यार करते हैं, बस इसीलिए नव्यांशी ने अरमान को ये सब बताने के लिए कॉल किया था। चलो शो ऑफ के चक्कर में ही सही, लेकिन तुम शिवांशा की परवाह कर रहे हो, ये मेरे लिए काफी है। वैसे तो मुझे वेद सिंह चौहान पर पूरा यकीन है कि अगर उसने वादा किया है तो वो पीछे नहीं हटेगा, पर खुद को सही साबित करने के लिए तुम लोग शिवांशा को पैम्पर कर रहे हो, ये अच्छी बात है, अरमान खुद से बोला। जब भी नव्यांशी बार बार उसके सामने आती थी तो वो उसकी ईगो को चैलेंज करता था। वो जानता था कि नव्यांशी जैसे लोग खुद को सही साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और वही हो रहा था। वहीं नव्यांशी के चेहरे पर इस वक्त मायूसी के भाव थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि अरमान के अचानक इस तरह बिना बताए दिल्ली जाने पर वो इतना परेशान हो जाएगी। मुझे क्यों बुरा लग रहा है, वो भी उस इंसान की वजह से, वो तो वैसे भी वापस जाना ही था। मैं ज्यादा सोच रही हूँ, फिलहाल मुझे कॉन्सर्ट पर फोकस करना चाहिए और इस बात पर भी कि कॉन्सर्ट में जाते वक्त वेद भैया से सब कुछ कैसे छुपाया जा सके। शिवांशा भाभी को भी मनाना है और बहुत सी चीजें करनी है, मेरे पास टाइम नहीं है उस जैसे फालतू इंसान के बारे में सोचने का, नव्यांशी मन ही मन खुद को समझाने लगी थी। उसका काम लगभग खत्म हो चुका था, इसलिए वो घर जाने के लिए निकल गई, तो वहीं वेद शिवांशा को लेकर घर पहुंच चुका था। घर के इस समय वेद और शिवांशा के अलावा बाकी कोई मेंबर नहीं था। जैसे ही वेद को शिवांशा ने अंदर कदम रखा, गुस्से में वेद की मुट्ठियां कस गई थीं, तो वहीं शिवांशा डर के मारे हमेशा की तरह वेद के पीछे छुप गई और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था।